खामोशी हो गई, खामोश होकर थोड़ी देर उठकर चले गए। बाहर जाकर उन्होंने यह कहा कि जवाब यही है, जवाब यही है। क्यों जवाब यही क्यों है? इसलिए कि ज़ाते बारी ताला ने तो महसूस मुबसर मुशाहदे के तरीक से उनको इत्मीनान दिलाया था कि तुम जबह करो, मुर्दा हो गए वो, और रख दो, आवाज दो, देखो किस तरीके से सर धड़ पैर हर एक एक का एक एक जिसका था वो लगकर उड़ गए। ये तो महसूस मुबसर चीज़ है। और सुबह कैफत ही मोहता से किस तरह, यानी इस तरह। अब मैंने जो सवाल किया था जिना और तान के दरमियान रब्त का, वो तो एक मफहूमी तो माकूली चीज़ थी। अब हजरत मुझे किस तरह दिखलाते कि देखो ये जिना हुआ है और इस तरीके से बीमारी उससे चली है और ये उसका ताल्लुक इस तरह हो गया है, वो तो माकूली चीज़ थी। जवाब जो होता वो एक माकूली चीज़ का होता, और वो जवाब जो होता दिया वो महसूस मुशाहदे का दिया है कि देखो। और माकूली चीज़ के अंदर तो बहुत लंबा मामला है, उस पर सिर्फ सवाल है, उस पर फिर जवाब है, फिर सवाल है, फिर जवाब है। तो मुशाहदे की चीज़ पर माकूली चीज़ को कयास करना, माकूली चीज़ को अखली चीज़ को मुशाहदे की चीज़ पर कयास करना, ये तो कयास माल फारिग है। मेरा सवाल तो ठीक नहीं था, वो जवाब यही है जो उसने दिया। मेरे पास क्या सबूत है कि इत्मीनान हो जाए? और वो ऐसे मौतक़द नहीं सवाल कर रहे। कैसे? जैसे मौन आशिक राय साहब थे मेरठी, बहुत काबिल थी इस्तेदाद, फसीह बड़ी उर्दू उनकी, मुख्तलिफ़ किस्म के इम्तहान दरसदानी से फरागत के बावजूद मौली आलिम फाजिल अदी आलिम फाजिल के इम्तहान दिए हुए थे। और मौन खलीमा साहब रहमतुल्लाह अलैह से बैत थे और मुजाज बैत भी थे, यानी उनको बैत करने की इजाज़त थी। एक मुजाज समत होता है, एक मुजाज बैत होता है। तो मौलिक रहमतुल्लाह के वो मुजाज बैत भी थे और इल्मियत के अंदर भी बड़े काबिल थे। तो उन्होंने मौलाना खलीम साहब को अपना एक हाल लिखा, हाल इस्लाही हाल लिखा। मौलाना खलीम साहब ने उनको उसका जवाब दिया। मौलाना आशिक राय साहब मरहूम ने उस जवाब पर ये लिखा कि मेरी समझ में नहीं आया, ये जवाब मेरी समझ में जवाब में समझ नहीं आया। तो मौलाना खलीम साहब ने लिखा कि तो फिर इसको थाने में मौलाना थानी साहब के पास लिखो, मौलाना थानी साहब के पास लिखो। तो वही अल्फाज वही मजमून बैन ही तभी हो सकता है। वहाँ कुछ और तरह लिख रहे हैं, कुछ और तरह लिख रहे हैं, बात क्या हुई कि मुस्तफ़ी कोई वाकया पेश आ जाए फतवे लेने का तो एक जगह तो लिखे किसी और अनुमान से, और एक जगह लिखे उसी चीज़ को किसी और अनुमान से, तो जैसा अनुमान जवाब होगा। फिर ये कहना उन मुफ्ती साहब ये लिखा है, उन साहब ये लिखा है, हमें दिख लाओ कि अनुमान कहीं बदल तो नहीं गया। जब मालूम हो एक तरफा की बात तो उनका फैसला कर देना, ये कौन सी अकल की दुरुस्ती की बात है? दोनों फरीक की बात सुनो फिर गौर करना झालू जहन होकर। तो मौलाना खलीम साहब लिखा मौलाना आशिक राय साहब को कि वहाँ लिखो। तो मौलाना आशिक राय साहब ने फिर अदवाला को वही मजबूर वही बात अपना हाल उन अल्फाज के साथ लिखकर भेजा। हजरत वाला ने उसका जवाब लिखा, वो खत उनके पास पहुंचा, पढ़ा, पढ़कर फिर लिखा कि हजरत जवाब समझ में आ गया, जवाब तो समझ में आ गया लेकिन इत्मीनान नहीं हुआ, इत्मीनान तसल्ली नहीं हुआ। ये लिखा हथवारा इसका जवाब सुभान अल्लाह, क्या ही अपने जमाने के कैसे थे और कौन थे। हथवारा ने लिखा कि हमें आपका इत्मीनान मतलूब नहीं है, अपना इत्मीनान मतलूब है, हमें इत्मीनान है, हमें आपका इत्मीनान मतलूब नहीं है, अपना इत्मीनान मतलूब है, हमें इत्मीनान है आपके इशार पर। उन्होंने जवाब लिखा इत्मीनान हो गया, इत्मीनान हो गया। तो आखिर वो भी तो मिजाज का शेख थे, कुछ फन से वाकिफ थे, समझ गए बात तो ठीक है। मरीज यो कहे, तब ये मैं अर्ज कर रहा हूँ तौफीक इलाही तबारक बरकत से, मरीज यो कहे कि जनाब मालूम तो ऐसा होता है कि मेरा मर्द जाता था रहा है मगर इत्मीनान नहीं, लेकिन इत्मीनान नहीं, तभी भी ये कहता है क्या अपना इत्मीनान देखते हैं मेरा इत्मीनान देखते हैं, मुझे इत्मीनान है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपका मर्द दूर हो चुका, मुझे इत्मीनान है कि आपका मर्द दूर हो चुका। अब क्या मरीज का हासिल है कि वो ये कहे कि साहब आपके इस इतना मुझे इत्मीनान नहीं, तो फिर इसके माने ये हुए कि आप मरीज तरीब हैं, खुद ही अपने मर्द का तशखीस फरमा रहे हैं, खुद ही तजवीज़ फरमा रहे हैं और खुद ही इत्मीनान फरमा रहे हैं, तब इत्मीनान हो। ये कौन सा तरीक़ है? तो जब मरीज पर मरीज को एतमाद नहीं था तबीब के ऊपर, तो उसको तरीब अपना मरीज बनाया क्यों? और जब एतमाद था वो यूँ कह रहा है कि मुझे इत्मीनान है कि आप मर्द से निकल चुके, अब मर्द आपके लिए नहीं है, तो उसको क्या ख्याल करना चाहिए, क्या इत्मीनान करना चाहिए? बहुत अच्छा जवाब फरमा रहे, मुझे इत्मीनान है, वरना मर्द जा नहीं सकता। तो हज़रत वाला ने देखिए यहाँ ये लिखा, वो क्या कह रहे हैं, मुझे इत्मीनान नहीं हुआ, समझ में आ गया, इत्मीनान नहीं हुआ। हज़रत वाला ने क्या लिखा कि आपका इत्मीनान मतलूब नहीं है, अपना इत्मीनान मतलूब है, मुझे इत्मीनान है, आपके हाल पर हमें इत्मीनान है। उन्होंने क्या लिखा, अब इत्मीनान हो गया। वो जो आए थे सदर दीनियात के, वह ये नौबियत नहीं है मर्द की, वह इल्मी नौबियत है और माकूलाना जवाब मतलूब है उस रब्त का, इसके लिए बहुत बड़ा मैदान है, और इतना बड़ा मैदान है कि जैसे मौलाना कासिम साहब और मौलाना रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला हज करने जा रहे हैं, हज करने के लिए जा रहे हैं पानी का जहाज, किसी फलसफे के मसले पर बात छिड़ गई, वो बात इस बात ने ज़्यादा तूल पकड़ा थी, लंबी हुई कि हर एक दूसरे को कह जवाब को रद्द कर रहा है, हर एक दूसरे के जवाब को रद्द कर रहा है। माँ गंगोई साहब कुछ फरमाए तो उसका जवाब दे रहे हैं कि इसका रद्द तो इस तरह पर है, उन्होंने जब रद्द कर दिया तो उसका रद्द वो कर रहे हैं। काफ़ी देर हो गई और पानी के जहाज़ में बैठने वालों को मज़ा आ रहा है, वो भी जमा हो गए, दिलचस्पी उनको भी हो रही है। जब बात बढ़ गई और काफ़ी देर हो गई तो मौलाना कासिम साहब ने फरमाया, अरे मियाँ रहने भी दो, ये तो मैदान अखली है, इसका कहीं खात्मा होता नहीं, आखिर कब तक? हम मक्के मुकरमा चल रहे हैं, हाजी साहब इस मतलब हम हाजिर होंगे, वह इस मसले को पेश कर देंगे, हाजी साहब इसका फैसला दे देंगे। मौलाना गंगोई साहब ने फरमाया कि वाह तुम भी अजीब बात करते हो, हाजी साहब को इन चीज़ों से क्या वास्ता, तो बहुत थोड़े दरस निदानी के तौर पर जो मौलवियों का निसाब है फरागत का, वो तो दो साल जिंदगी काफिया, सिर्फ काफिये तक पढ़े थे बस, कि उनको इससे क्या मतलब, इन मसाइल से हाजी साहब क्या मतलब, उन्हें क्या मालूम है? तो मौलाना कासिम साहब ने फरमाया, वाह खूब, आप क्या, आप भी कैसी बात फरमा रहे हैं, तो फिर हमने हाजी साहब का दामन खामखा पकड़ा, हमने हाजी साहब का दामन खामखा पकड़ा। तो मौलाना गंगोई साहब ने फरमाया कि मियाँ जिस चीज़ के लिए दान पकड़ा है उसमें तो हाजी साहब के क्या कहने हैं, हम बहुत मोहताज हैं इसमें, तो जिस चीज़ के लिए दान पकड़ा है, और ये चीज़ तो माकूली फलसफी मंतिक की है, इसलिए दान थोड़ी पकड़ा है हमने, उनको इससे क्या मुनासिबत जोड़ है? मौलाना कासिम साहब खामोश हो गए, बात खत्म हो गई, मक्का मौसम आ गया, उतर गए, हाई साहब खिदमत में हाजिर हो गए, सलाम हो रहा है, मुसाफा हो रहा है, मिजाज पुरसी हो रही है, खरीद वगैरह याद की जा रही है, अजा खबा वगैरह वगैरह, जो कि वो तरीक़ सुन्नत आने वाले मेहमान के साथ होना चाहिए। इसी गुफ्तगु में हाजी साहब के कलाम बातचीत शुरू हो गई, मरफूजात मजलिसी मरफूजात शुरू हो गए, उन्हीं बातचीत मरफूजात में हाजी साहब ने इस मसले को छेड़ दिया, जो मौलाना गंगोई ही और मौलाना नानोतवी मौलाना गंगोई के थे, मौलाना हाजी साहब नानोते के थे, उस मसले को छेड़ दिया। और उसकी अच्छे खास की लंबी तकरीर फलसफियाना रंग में, इस्तलाही और बाकूना रंग में उसकी तकरीर, और बहुत साफ सुथरी सादा तरीके से भी उसकी तकरीर फरमा रहे। मौलाना गंगोई साहब ये कुछ कह चुके थे तो हैरान है कि क्या किस्सा हो। मौलाना कजन साहब खुश हैं कि मैं तो कहा कि वहाँ फैसला हो जाएगा। तो हाजी साहब ने उस मसले को खूब मुनक्का वजाहत के साथ बयान करे और फिर फरमाया, बाद लोग यूँ कहते हैं उसकी तकरीर की, बाद लोग यूँ कहते हैं उसकी तकरीर की, फिर फरमाया फकीर ये कहता है। खामोश, दोनों होठ बंद, खत्म हो गया मसला। मस्जिद खत्म हुई, उठकर बाहर आए तो मौलाना कजन साहब तो क्या ही कहते, वो तो पहले ही फरमा चुके थे। मौलाना गंगोई ने फरमाया, यार तुमने बात तो ठीक कही थी, तुमने बात बाकी ठीक कही थी, कैसा हाजी साहब कहाँ से बोल रहे हैं। फिर हाजी साहब से किसी दूसरे मौके पर आदर दरिया क्या हजरत, क्या मंत्र फलसफे की इस्तराहत भी कभी कुछ इलहम होता है। फरमा, हाँ कभी ऐसा भी हो जाता है, कभी ऐसा भी हो जाता है। तो माकूल मंत्र फलसफे की जो खास इस्तलाह है, ला बिशरत शह बिशरत शह बिशरत ला शह, आप ज़्यादा पढ़ी होगी मुल्लात वरा के अंदर, उसी और इमकाज़ या चीज़ आती नहीं है अगर वहाँ से पढ़ा हो। तो हाजी साहब बिला उनके पढ़े हुए भी वो इस्तलाही अल्फाज ऊँची ऊँची बोला करते थे। ये क्या बात है, ये क्या बात है कि बड़े बड़े मशायख वो गुजरे हैं कि जो उम्मीद भी थे, और वो गुजरे हैं कि जिन्होंने अरबी पढ़ी ही नहीं। दर्द निजामी मीजान से मुखारी इश्तहार जिसको मौलवी कहते हैं नहीं। और फिर ये क्या बात है कि बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मौलवी उस जमाने के, और वो इन ऐसों के पास पहुंचे अपनी इस्लाह के लिए, तज़किए नफ्स के लिए। हुज़ूर ने फरमाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अमिला बिमा अलिमा और रसूलुल्लाह हो मालम यालम, जिस शख्स ने इल्म को हासिल किया और उसने उस पर अमल किया तो अल्लाह ताला उस शख्स को वारिस बना देंगे उन उलूम का जिन उलूम को उसने हासिल नहीं किया पढ़ाने। यह है वो उलूम कि बकरे सरबत तो उन्होंने पढ़ा, फारसी का इंतजाम जमाने के अंदर माला बुद्धा पढ़ी और फारसी किताबें जो दीनी मसाइल की थी उनको पढ़ा, बकरे जरूरत आसान मालूम हो गए, पाकी नापाकी के मालूम हो गए, हलाल हराम के मालूम हो गए, नमाज वगैरह के मालूम हो गए, उस पर वो अमल कर रहे हैं। शेख से जाकर मिल गए, शेख से तज़किए नफ्स हो गया, बकरे जरूरत इल्म हासिल था, इल्म तरक्की कर गया। जैसे एक आलिम साहब पहुंचे एक शेख के यहां, अखबार सुना रहे, एक और साहब है उनके साथ, नावाकफियत से लोग छिड़ देते हैं। जाकर कहा कि जनाब मैं आपसे कुछ दरियाफ्त करना चाहता हूं, उसका जवाब मैं आपसे चाहता हूं। उन दरवेश से कहा, क्या फराइज का मकाम ऊंचा है और उसको अव्वलियत हासिल है या सुनन को, उनका फराइज का, फराइज का सुनन का नहीं है। जब ये बात है तो वजू के अंदर तो चार फर्ज हैं, हाथों का धोना कौनवे समीत, चेहरे का धोना पेशानी से थोड़ी नीचे और कान से कान के लो, मसा करना और पांव धोना, ये चार फर्ज हैं। और अभी आपने फरमाया उसको तकद्दुम हासिल है, अबरियत हासिल है, उसका दर्जा बुलंदतर है, समझ से है। तो फिर ये क्या बात है कि फर्ज तो बाद में और सुन्नत पहले, कि गट्टों से हाथ धो, कुल्ली करो, नाव के पानी डालो, जब इससे फरागत हो जावे तब जाके फर्जा हो रहा है, धो रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, मुंह धो रहे हैं, मसा कर रही है, ये क्या बात है। उन शेख ने कहा ये बात मेरे जवाब देने की नहीं है, ये बात मेरे जवाब देने की नहीं है, ये जो बैठा हुआ है खादिम, ये जो बैठा हुआ है इसका जवाब से ये दे देगा जो पढ़ा ना लिखा। मौलवी साहब का नाम नहीं जानता, वो क्या होते मीजान, उसका जवाब ये दे देगा। ये क्या जवाब देगा इसका कि आप इससे पूछिए, अगर ये जवाब न दे तो फिर मैं दूंगा, इनसे पूछिए। अच्छा जनाब आप ही जवाब तेजी के साथ आप ही जवाब दे दीजिए। क्या जनाब इसका जवाब तो आसान है, क्या कि जिस पानी से आप अदा करना चाहते हैं उस पानी के अंदर वो पानी कैसा होना चाहिए, उसकी तीन सिफात जब साबित हो जाएंगी तो साबित होगा कि ये पानी वुजू के लायक है या नहीं है। माय मुतलक, ऐसा पानी कि जिसके को पानी कहा जाए, कोई दूसरा नाम उस पर ना जावे, शोरबा, अर्क गुलाब, अर्क केवड़ा, मिसाल के तौर पर। माय मुतलक, माय मुकैद नहीं, उसके लिए जरूरत है रंग बू मजा, कि पहले ये मालूम करना है कि इसका रंग कैसा है, ये मालूम करना है कि इसका मज़ा कैसा है, ये मालूम करना है कि इसकी बू कैसी है, कहीं तगैर तो नहीं हो गया उसके रंग और बू मज़े के अंदर। और जब ये जानना ज़रूरी है कि ताकि उसके अंदर सलाहियत अहलियत आ जावे वुजू के करने की, तो ज़रूरत इस बात की है कि पहले पानी में हाथ डालो और चुल्लू के अंदर पानी लो, तो सफ़ेद है, साफ है, इसमें कोई चीज़ मिली हुई नहीं है, कि पानी का रंग असल सफ़ेद। एक बात हल हो गई, अब देखना यह है कि इसका मज़ा कैसा है। अब मज़ा होगा मुंह में ले जाने पर, अब मुंह में ले गया पानी, जब मुंह में पानी ले गया मज़ा मालूम होगा, जैसे पानी हुआ करता है, इसमें किसी किस्म की कोई बदमजगी नहीं है, मुझे मालूम हो गया। तीसरा ये मालूम करना है कि इसका रंग कैसा है, कहीं रंग में तब्दीली उसकी आ गई हो तो पानी के असर उस पर सही न हो, तो उसने पानी को लेकर नाक में यूँ किया, जब नाक में यूँ किया तो नाक बताई करती है कि बदबू है खुशबू है, मालूम हो गया कि इसमें कोई चीज़ मिली हुई बदबू नहीं। तो पानी के जो तीन सिफत होने चाहिए वो हासिल हो गए, अब ये पानी इस काबिल हो गया कि इसको फर्जों के अंदर इस्तेमाल किया जाए। अब मुंह भी धो रहा है, मसा भी कर रहा है, पैर भी धो रहा है। मौलवी साहब दंग रह गए, तो फो इसने एक हर भी नहीं पढ़ा, कहीं मदरसे में अरबी गया भी नहीं, हिदायत के साथ नाम भी न सुना हो, चुप खामोश चले आए। ये सबूत होगा इस बात पर कि जो हदीस शरीफ में हुजूर ने फरमाया है, हर तरह फरमाते हैं कि मन अमिना बिमा अलिमा, जिस शख्स ने हासिल किए हुए इल्म पर अमल किया, असल्लाह मालम यालम, अल्लाह ताला वाज बना देंगे उस शख्स को उस इल्म का जो उसने हासिल नहीं किया। यह है वो तखवा, यह है वो तखवा तज़किये नफ्स और कसरत ज़िक्र वाला। शरह सदर, बात वो उसके जहन में आती है कि जो दूसरों के जहन में पढ़ लिख कर भी ना आवे। इसलिए वो उलमाए किराम जो तबाहुर इल्मी और तामुक इल्मी रखते थे उनके पास पहुँचे तज़किये नफ्स के लिए कि जो आलिम नहीं थे लेकिन आलिमगर। इसी का जवाब दिया था मौलाना कासिम साहब ने एक शख्स को कि बड़े ताज्जुब की बात है कि आप इतने बड़े साहिब इल्म होकर और हाजी साहब के पास जिनके पास के इल्म आपके नसो चौथाई आठवा हिस्सा भी नहीं था और वहाँ पहुँच गए आप, ये क्या बात है। तो मौलाना कासिम साहब ने इसका जवाब ये दिया कि हमारे और हाजी साहब के इल्म के ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारा इल्म तो ऐसा है मिसाल के तौर पर कि जैसे हमने कोई महल देखा बाहर खड़े होकर उसका दरवाज़ा, उस महल का दरवाज़ा बड़ा आलीशान है, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा अजीब वगैरह नक्श निकार के बना हुआ है। अब हमारा ख्याल दौड़ा कि जिसका दरवाज़ा ऐसा है तो उसका अंदर तो क्या होगा, अपने दरवाजे को देखकर ख्याल दौड़ाना शुरू कर दिया कि एक कमरा ऐसा होगा, फला कमरा ऐसा होगा, फला कमरा वैसा होगा। अब वैसा है या नहीं है हमें देखा तो है नहीं, दरवाजे को देख रहे हम हुक्म लगा रहे हैं, ऐसा होगा। बखरा हाजी साहब के, हाजी साहब अंदर घुसे हुए हैं और हर एक एक कमरे को देखे हुए हैं, मुशाहदे के बाद बता रहे हैं। तो हमारा इल्म तो एक क्यासी इल्म है और हाजी साहब का इल्म इल्म मुशाहदी इल्म है। तो कहाँ क्यासी इल्म, कहाँ मुशाहदी इल्म। तो हाजी साहब के इल्म के मुकाबले हमारा इल्म तो कोई चीज़ नहीं है, इसलिए हम उनके मुतखिर हुए। तो बड़े बड़े उलमा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उर्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के खलीफ़ ख़ास, और मौलाना फरीद शकर गंजी बहुत बड़े आलिम थे। यानी वसीउ नज़र तबाहुल इल्मी, अमीर को नज़र गहरी, लेकिन इसके बावजूद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो मौलवी साहब न थे बेचारे, उनके पास पहुँचे। फिर ये बात कहाँ से आई? इसलिए कि तज़किए नफ्स, तखलिया नफ्स का और तहलिया और तदरिया कल्ब का।